ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाघया। कृपया सब आगे बढ़िए, पीछे जगह नहीं है, खाली जगह। माता भी आगे बढ़िए, भक्त लोग भी आगे बढ़िए, और आगे बिल्कुल साथ में हो जाओ। पीछे जगह नहीं है तो आने वाले फिर वो चले जाते हैं वापस, साथ साथ हो जाओ। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारणे। मिलकर सारे बोलो, हाथ खड़ा करके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता रथ यात्रा महामहोत्सव की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद, सबका स्वागत। तो आज रथ यात्रा है तो मेरी इच्छा हो रही है कि रथ यात्रा के बारे में बोला जाए कुछ। ठीक है माताओं भाइयों, ठीक है भाई ढीले है थोड़े, नहीं नहीं बोला रथ यात्रा के बारे में। तो देखो ऐसा है, बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें एक दोष है, बचपना है, अनुभव कुछ नहीं उसको। तो बच्चा पढ़ाई ना करके खेल कूद में मन को लगा के रखता है, और जब परीक्षा में बैठता है तो फेल हो जाता है। जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को स्कूल में भेजने का अर्थ हमको भगवान ने ये शरीर दिया, उस पृथ्वी पर हम आए हैं, 84 लाख योनियों में से चक्कर लगाने के बाद इस शरीर दिया भगवान ने हमको। और ये शरीर तो परमपिता ने इसलिए दिया कि हम उनकी भक्ति करें, पढ़ना मतलब भक्ति करना। बाकी ये जो विषय विकार जो संसार के काम है, ये खेल कूद है बच्चों का, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो हमको मनुष्य ऋण मिला है केवल एक काम के लिए, उसको याद रखना है। जब बच्चे को माँ बाप डांट के समझाते हैं तेरा काम पहले पढ़ना है, अच्छे माता पिता बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हमारा शरीर से एक भाई अनपढ़ था, दो बड़े वाले अनपढ़ थे, तो हमारे शरीर से एक बहन जो है हमें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन भाई दिलचस्पी नहीं ले रहा, वो खुद अनपढ़ था, सोचा हम भी अनपढ़ रहे, लेकिन बहन ने बड़ी डांट डपट करके हमको पढ़ाया, तुमने पढ़ना है। तो हम लोगों को ये जो शरीर परमपिता ने बड़ी कृपा करके दिया है, इसका उद्देश्य है कि उनकी भक्ति करना, क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं और वो हम सब के हैं। लेकिन आज हम जो हैं उनसे अलग हो चुके हैं, जितने भी संसार में जीव हैं हम सब जीव हैं, हम सब भगवान के हैं। वैसे पशु पक्षी भी भगवान के हैं, चींटी भी उसके अंदर आत्मा है, वो भी परमात्मा की है, हम सब भगवान के हैं। लेकिन इस बात को हम भूल गए हैं, और जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है, अज्ञानता है। अब प्रश्न उठता है अविद्या और अज्ञानता कहाँ से आई। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग भमसा करे पाशेते माया तारे झौपटी अधरे। जीव जब भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है तो वो माया अविद्या के अधीन हो जाता है। माया करते जो नहीं है वो माया है। तो हम सब माया के वशीभूत हैं अपने अपराध के कारण, किसी का दोष नहीं है। कोई कहता है जी मैं जो करता हूँ भगवान करवाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी देखो कि जैसे एक बार हमारे गुरु भाई, हम कुछ समस्या की बात करते हैं, जो कहता है कि कृष्णा इज इन कंट्रोल, मतलब कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। फिर मैंने एक महाभारत की घटना सुनाई उसको, तो फिर चुप हो गया वो। महाभारत में पांडव वनवास में हैं और कृष्ण भगवान तो भक्तों की सुध लेते हैं। भगवान ने कहा भी है गीता में, अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो वनवास में भगवान पांडवों की खबर लेने गए तो चर्चा चली कि देखो दुर्योधन ने कितना अन्याय किया है, बहन द्रौपदी की बेइज्जती की, रक्षा की भगवान ने, पर उसने तो पूरा प्रयास किया द्रौपदी को नग्न करने का और आप लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की, जहर दिया और वन में भेज दिया। अभी क्या गारंटी है कि आप लोग जब वापस जाओगे आपका राज वो आपको वापस देगा? तो भीमसेन जी कहते हैं फिर तो युद्ध होगा, हम लड़ेंगे। भगवान कहते हैं मैं युद्ध नहीं चाहता। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे, पांडव पांचों जानते थे, पांचों भक्त हैं कि कृष्ण कौन है, ये हमारे भाई की मामे और बुआ के लड़के हैं ना, मलेर फफेर भाई हैं, कि हमारे भाई के रूप में तो आए हैं पर ये सर्वेश्वर भगवान सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं। पांडवों की माता कुंती ने कभी भी कृष्ण को अपना भतीजा नहीं माना। कुंती की प्रार्थना में एक श्लोक आता है, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थिति, हे कृष्ण सर्व अब सबको जानते हो लेकिन आपको कोई नहीं जानता, अब सबके हृदय के जानते हो लेकिन आपको कोई नहीं, अलक्षम सर्वभूतान सब जीवात्मा। तो परमपिता ने कहा कि देखो मैं युद्ध नहीं चाहता। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हे कृष्ण अगर आप युद्ध नहीं चाहते तो फिर युद्ध नहीं होगा। अब यहां भगवान ने उत्तर दिया है, उस उत्तर को सुनो ध्यान से, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं मैं ये चाहता था कि आपको जहर दिया जाए, भगवान थोड़ा चाहते थे, और दुर्योधन ने दिया, धृतराष्ट्र ने मिलकर मारना चाहा उनको, उत्तर नहीं, मैं चाहता था कि बहन द्रौपदी की बेइज्जती हो, नहीं, मैं चाहता था तुम्हारा राज छीन लिया जाए, नहीं। तो देखो भगवान जो चाहते हैं वो गीता में उन्होंने कहा है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम अपने मन के इतने वशीभूत हैं, देहात्मक बुद्धि कुनपेत्री धातु के हैं, भागवत में श्लोक आता है जो अपने आप को कफ पित बात से बना हुआ शरीर समझता है, सा एवा ही गोखरा, वो गाय है या गधा है, खोता, खोता कहते हैं ना, या गधा है, गाय या गाय, पशु है वो, हम ये शरीर हैं ही नहीं। तो पांडवों को, पांडव भक्त हैं, भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता। तो युधिष्ठिर जी कहते युद्ध फिर आप नीचे नहीं होगा, भगवान ने उत्तर दिया तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। ऐसे जैसे देखो अभी आप लोग बैठे हैं, आप उठ के चले जाओ सारे, कहो मैं हमने नहीं सुनना आपको, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं कहूँ मैंने नहीं कुछ बोलना तो आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप भी स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, जो हम समझते नहीं, बुद्धि मलिन है ना, अविद्या है, अविद्या के कारण हम बड़ा महान समझते हैं अपने आप को, बड़ा महान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। चार दोषों में से एक दोष ही है चीटिंग, धोखा। तो अविद्या में होने के कारण हम इस बात को भूल गए हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, भागवत महापुराण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से, भगवान की कृपा से हमें इस बात को समझना है हम सब कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, हैं हम सब उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। गीता में भी भगवान ने कहा सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदा पिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य मनुष्य शरीर में चाहे स्त्री का चोला कर्म से मिला या पुरुष का, एक ही काम है, अपने सोए हुए भाव को जागृत करना। याद रखो भाव सभी के अंदर है लेकिन वो भाव हमारा बटा हुआ है, बुराइयों की तरफ है। देखो जीव इतना स्वार्थी हो जाता है कि एक जीव की बात मुझे बार बार ध्यान में आती है, वो सेवा की भगवान की, उसने कैसे की, गड़बड़ उसमें थोड़ी की, चलो उसकी कन्या थी तो प्रभुपाद कृपा से उसका विवाह किया, अच्छी तरह से सब कुछ दिया। जरूरत पड़ी उस जीव के लड़के की टैक्सी थी, टैक्सी को भाई इस्तेमाल करना है, कहते नहीं आप किराया नहीं देते, लाखों रुपये उसके लिए। जीव कितना स्वार्थी है, देखो उसकी लड़की के व्यवहार पर प्रभुपाद जी ने खर्चा किया और वो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए अपने लड़के को मना कर रहा है टैक्सी देने के। ये हालत है जीव की, जीव इतना पतितर निकृष्ट हो चुका है, स्वार्थ प्रेरित भावनाएं उसकी हैं। और जब तक मेरे या आपके अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर स्वार्थ प्रेरित भावनाएं रहीं, फिर हम भाव को जागृत नहीं कर सकते। भाव तो जागृत तभी होगा जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। भक्ति कैसे? निष्काम, कोई कामना नहीं। तो ये रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन है? एक हमारे आचार्य कहते हैं, हाथ जोड़ करके सबको कह रहे हैं, वो वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। देखो हम में भी नम्रता नहीं है, भक्तों में कितनी भी नम्रता है। वासुदेव घोष शुद्ध भक्त थे भगवान के, भगवान के पार्षद हैं, वो गौर पार्षद हैं। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जई गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जई गौर से ही जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़ा जोड़ करके उनकी कृपा से हम भी जोड़ रहे हैं हाथ। हमें शर्म आती है हाथ जोड़ने में, क्योंकि विनम्रता नहीं है हमें, हम अहंकार से भरे पड़े हैं। शुद्ध भक्त कोई शर्म नहीं उनको, वो तो आत्मा के स्तर पर है। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण हैं वही जगन्नाथ हैं। तो रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा जो है, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, भगवान जब द्वारका लीला में प्रवेश कर गए, द्वारका लीला में तो राजा हैं भगवान, वो राजा नहीं है भगवान, राजाओं के राजा हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, कृष्ण से परे कोई नहीं है, सबके स्वामी सबके मालिक। तो महाराजा का वो रोल कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो लेकिन भगवान सदा ब्रज को याद करते थे, ब्रजवासियों को याद करते थे। एक बार रुक्मिणी, जो भगवान की पटरानी है, रुक्मिणी कहती हैं रोहिणी माता को, जो बलराम जी की जननी, वैसे बलराम जी की माता भी देवकी थी, पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे, फिर भगवान ने उनकी योग माया को कहा ये जो देवकी का सातवां गर्भ है इसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कर दो। तो रोहिणी माता भी बड़ी महान है, बलराम जी की माता है। वो पूछा कि आप ब्रज में इनके साथ थी, ब्रज में क्या विशेषता है? हम अपने स्वामी श्री कृष्ण को हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये रुक्मिणी कहती हैं कि रात को उठ के रोते हैं भगवान, रोते कहते मेरी साड़ी का पल्लू भी गीला हो जाता है, हे राधे हे ललते हे विशाखे हे नंद बाबा हे यशोदा मैया हे सुबल सखा, अपने सखु सबको याद करते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं क्या विशेषता थी ब्रिज में जो हमारे स्वामी आज ही ब्रिज को याद करते हैं? तो रोहिणी माता कहती हैं मैं बताती हूँ, पर अगर मैंने ये बताना शुरू किया कृष्ण बलराम आ गए तो वो पुनः फिर ब्रिज को चले जाएंगे, तो फिर उनको कौन, कोई नहीं रोक सकता। तो सुभद्रा जी को बाहर खड़ा कर दिया, सुभद्रा माता को बाहर खड़ा कर दिया, जो भगवान कृष्ण बलराम की बहन है। उनको खड़ा किया, भाई अंदर किसी को नहीं आने देना। तो भगवान एक असेंबली में बैठे हुए थे, लेकिन भगवान से क्या छुपा है। तो भगवान दोनों भाई उठे, कृष्ण बलराम आ गए, तो जिसको अपना सुभद्रा जी ने हाथ खड़े कर दिए, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो कृष्ण बलराम वहीं रुक गए। लेकिन रोहिणी जब ब्रिज का वर्णन कर रही हैं, वो भी इतनी भावुक हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी वो, और दोनों तीनों बार सुन रहे हैं। जब तीनों सुन रहे हैं तो ब्रिज की लीला, ब्रिजवासियों की कथा सुन करके तीनों भाई भावुक हो गए। ये जो हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हो, ये ब्रिज का भाव है। यशोदा जी अपना सुभद्रा जी का तो इतना भाव जागे, उनके हाथ पांव सब अंदर चले गए, लेकिन कृष्ण भगवान और बलराम के भी हाथ पांव अंदर चले गए। तो तीनों ने जो है भावुक हो गए। प्रिय बंधुओं व माताओं, इतनी देर में नारद जी आ गए। नारद जी आए और उन्होंने देखा भगवान का ये भाव, वृंदावन का भाव। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने नारद जी को देख के भाव संवरण कर लिया, वैसे ही बन गए। लेकिन नारद जी नृत्य कर रहे हैं, नारद ने कहते मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, दर्शन कर आके चरणों में गिर गए, दंडवत की कि प्रभु मैंने अनेकों रूप आपके देखे, अनेकों अवतार आपके देखे, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं, सर्वशक्तिमान, लेकिन ऐसा रूप नहीं मैंने देखा प्रभु। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। भगवान कहते बोलो नारद, क्या चाहिए आप? मेरी प्रार्थना यह कि आप कलियुग के लोगों पर देखो, भक्त मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, हम स्वार्थी लोग अपने लिए मांगते हैं, भक्त दूसरों के। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। जब भी कभी नारद जी का नाम आता है, मैं प्रायः लोगों को ये सूचित करता हूँ, वार्निंग देता हूँ, कभी भी नारद जी के नाम से उपहास नहीं करना। ये जो बेकार फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसने नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया। नारद जी भगवान कहते हैं, देव ऋषियों हैं, मैं नारद हूँ। तो नारद जी ने क्या मांगा, अब कलयुग के लोगों पर इन्हीं स्वरूपों से कृपा करेंगे। तो अपने भक्तों की तो बात भगवान सुनते हैं। ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नारद जी की कृपा से आज कलयुग में भी विराजमान है। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान द्वारका लीला में हैं। अभी इच्छा हुई भगवान की कि अपना पास में ही आपके जो है सूर्य ग्रह लगा था, और वो कौन सी जगह है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बड़ा सरोवर है, तो वहाँ स्नान किया जाता है सूर्य ग्रहण के समय भगवान की वहाँ। और ब्रिजवासियों को पता लगा, दूर नहीं है जहाँ से, द्वारका तो दूर है, सारे ब्रिजवासी वहाँ आ गए। ब्रिजवासी आ गए और भगवान भी उनको देख के भावुक हो गए। और ये इस लीला से भगवान बताना चाहते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं। ब्रिजवासियों ने क्या किया, भगवान के रथ के घोड़े खोल दिए, घोड़े खोल दिए और स्वयं रथ को खींचने लगे। परमपिता देखते कहते हैं, ब्रिजवासियों तुम मेरे घोड़े बन गए, चलो मुझे यहाँ ले चल। भाव से भगवान कहीं भी चले जाएंगे और बिना भाव के कुछ नहीं करेंगे वो, और हम कुछ दे भी नहीं सकते भगवान को, केवल भाव और प्रेम बस। वर्णन आता कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जो को केवल प्रेम प्यारा है, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो अभी ब्रिजवासी कुरुक्षेत्र से भगवान जगन्नाथ कृष्ण यानी कि उनके भाई बलदेव बहन सुभद्रा को ब्रिज भी ला रहे हैं। तो भगवान ब्रिज में आए ब्रिजवासियों के द्वारा। हमने भी एक भजन में एक वैष्णव कहते हैं, अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल नवय अरुण समा जागो हृदय ममा सुंदर गिरिधारी माधव कृष्ण गोपाल नयन गने बेतरी बादल जागो जागो तुम्हें किशोर श्यामल श्री राधा प्रीतम जागो हृदय मम जागोगे घोस्ते रखा माधव कृष्ण गोपाल जसोदा दूलाल ऐसो ऐसो नो निचोर प्राणेर देवता ऐसो ही किशोर लोई राधा बामे हृदय ब्रिज धामे ऐसो गे ब्रिजे रखा माधव कृष्ण गोपाल। ये भजन मैंने इसलिए सुनाया जसोदा दुलाल, जसोदा के बड़े दुलाले हैं भगवान। जसोदा दुलाल ऐसो ऐसो नौनिचोर मक्खन के चुराने वाले प्राणे रा देवता मेरे प्राणों के अब देवता हैं ऐसो ही किशोर लोई राधा बामे राधा जी को बाम बाग में लेकर हृदय ब्रज धाम में मेरे हृदय रूपी ब्रज धाम में आप प्रभु विराजमान हो जा ऐसो हे ब्रजे रखा ओ ब्रजवासियों के रक्षक मेरे हृदय रूपी ब्रज धाम में। तो हमने हृदय को वृंदावन धाम बनाना है। अगर मेरे मन में मेरे हृदय में छल कपट छिद्र है बुराई हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट ये बुराई हैं कैसे भगवान विराजमान होंगे। मुझे इन चीज़ों को बाहर निकालना पहले ये गंदगी को बाहर निकालना है। और जगन्नाथ जी से आप सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं ना रथ यात्रा में, अरे बोलो तो सही, जो जो नहीं जा रहा हाथ खड़ा करो, नहीं जा रहा, नहीं जा रहे, उसने हाथ खड़े किए दो किए थे, नहीं जा रहे हो, तो मैंने कहा नहीं जा रहे तो आपने हाथ खड़े कर दिए। सभी ने आना है और ये भाव लेके आना है कि भगवान को हमने ब्रिज में लाना है, ब्रिज में जाना है, तो हृदय को ब्रिज धाम बनाना है और भगवान को यहाँ विराजमान करना है। और देखो जगन्नाथ जी से केवल भाव मांगना और कुछ नहीं, जगन्नाथ जी भाव के स्वरूप हैं वृंदावन भाव। और ब्रजवासियों में क्या था, नंद जसोदा राधा ललिता विशाखा आदि सखी जो हैं भाव से भरे जो सारे, बस सदा उनका भाव कृष्ण को प्रसन्न करना था। इसलिए गोपियों की भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति बताई है, हनुमान जी की भक्ति भी बड़ी श्रेष्ठ बताई है। जब राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो उस समय भरत जी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे, धन्य है भरत जी का भी जीवन। भरत जी को राम जी सुना रहे हैं सारी बातें, तब रामचंद्र ने कहा भरत भाई कपि से उरिन हम नाहीं, कपि कौन, हनुमान जी। तो क्या किया हनुमान जी ने, क्या भगवान की निष्काम सेवा की, हनुमान जी से और गोपियों से निष्काम सेवा की प्रेरणा लेनी है। निष्काम भाव खत्म होता जा रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि हमारे हिंदू मंदिर क्यों नहीं कोई जाता, निष्काम भावना है ही नहीं, भगवान है ही नहीं वो विग्रह अर्च विग्रह, जब भगवान उनमें विराजमान है, जब भगवान चले जाए आपको कलग्रह, कलग्रह भगवान प्रभुपाद कहते हैं कलग्रह। अब अर्च विग्रह को जहाँ भगवान विराजमान है किसी ने अगर उनको क्षति पहुँचाने की कोशिश की उसकी दुर्गति हो गई। अभी जैसे जब औरंगजेब पहुँचा श्रीनाथ जी में उनको तोड़ने के लिए तो अंधा हो गया, अंधा हो गया वो, उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, बड़े विघ्न तोड़े। बाकी विघ्नों में भगवान बीच में नहीं थे, लेकिन ये जो विग्रह श्रीनाथ जी का है ये तो कृष्ण भगवान के समय का विग्रह है। स्वतः भगवान प्रकट हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान की निष्काम सेवा करनी है। ये निष्काम सेवा का भाव समाप्त हो रहा है, इसलिए अभी देखो प्रभुपाद जी के मंदिर में क्यों दुनिया आती है, उन्हीं की कृपा से प्रभुपाद जी ने निष्काम सेवा सिखाई। अभी देखो यहाँ कितना सुंदर श्रृंगार भगवान का, कितने फूलों का श्रृंगार, सब कुछ प्रभुपाद के प्रति, तो यही तो प्रभुपाद जी ने दिया। तो दुनिया आज सुबह तो कितने लोग, और कल सायंकाल को हम जब उसमें दीप अर्पण कर लेते, दान नहीं कहो, हम क्या भगवान को दान दे सकते हैं, हमारे बाप का है क्या, है कुछ हमारे बाप का, बोलो। मेरे बाप का तो कुछ है नहीं, अगर आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं। दान क्या दे दे, अर्पण प्रभु हैं, ये मैं दीप आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। दीप दान नहीं, दान नहीं, अरे भगवान को कुछ जरूरत है ही नहीं, पर प्रेम से कुछ दोगे उनको बेचारे स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम से भगवान को शबरी ने जूठे बेर अर्पण किए, और जो भावना है ना, शबरी सोचने लगी कि बेर तो कोई खट्टे भी होते हैं, अगर मेरे राम जी को खट्टा बेर चला गया तो अच्छा नहीं, कैसे पता लगे, चखे कौन, शूद्र जात की भीलों की कन्या अछूत, चखे मीठा हो तो राम जी का, राम जी खा ले हैं। झूठे फल ये तुलसीदास अपने सूरदास जी बता रहे हैं, झूठे फल शबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम, ये प्रेम सबके अंदर है, लेकिन मेरे पापों के कारण मेरा प्रेम ढक गया है, मुझे प्रयास करना, मिलजुल के प्रयास करना है। प्रयास करने को मेरा सोया हुआ प्रेम जागृत हो जाए, हैं? कब 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 तक जागृत हो जाए, इससे पहले मेरी आत्मा शरीर को छोड़े, मैं बुराइयों को छोड़ दूं सारी उनको, और गुरु गौरांग नित्यानंद राधा कृष्ण की कृपा से मेरे अंदर प्रेम जागृत हो जाए, और मेरा अंत में उन्हीं का स्मरण हो, हैं? जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शन ना दिखा है, यमदूत ना दिखे किसी को, किसी ने देखना है यमदूत, देखे हैं किसी ने, नहीं नहीं, अगर भक्ति नहीं की तो देखने पड़ेंगे भाई, ध्यान रखो, अगर भक्ति नहीं की, ठगती की, ठगा लोगों को, मैं जा आप ये जा वो कोई भी, उसको यमदूत छोड़ेंगे नहीं। भक्ति करनी है, भक्ति करेंगे, भक्ति माँ की कृपा से हृदय निर्मल होगा। तो भगवान का जो भाव और प्रेम है कृष्ण के प्रति, वृंदावन के भाव, उसको जागृत करना है, वो निष्काम सेवा से होगा। तो मैं एक दो कथा सुनाना चाहता था आपको समय के अंदर ही रह करके। एक माता थी, बड़ी भक्ति थी भगवान की, उनको माँ बाप ने तो नाम कुछ और दिया था, लेकिन जगन्नाथ भगवान ने उनका नाम रखा था कर्मा बाई, कर्मा, कर्मा कैसे नाम पड़ा वो आएगा बीच में प्रसंग। ये कर्मा बाई क्या करती थी, रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, और भगवान साक्षात रूप में जगन्नाथ आते थे और खिचड़ी का आरोपते थे। क्या था उस खिचड़ी में, कर्मा बाई का भाव और भक्ति। एक दिन क्या हुआ, एक पंडा पुजारी ब्राह्मण, उसने देखा कर्मा भाई को खिचड़ी, बिना नहाई खिचड़ी चढ़ाई है उसने। एक महात्मा ये बात सुनाते थे, कहते थे कर्मा भाई आज दातन कर रही है, खिचड़ी चढ़ाई तो दातन बीच में घुमा देती थी, ऐसा तो नहीं करती होगी, पर मैं भाव से खिचड़ी। कहते कर्मा भाई तू ये क्या करती है, कहते क्या, भोली वाली माता तो भगवान के लिए बनाती है, तुम्हें पहले चौका करना चाहिए, हैं, लकड़ियाँ पहले दिन धोनी चाहिए, चौका भी दीवारों तक गाय के गोबर का लगाना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए, बहुत कुछ बताया। तो अच्छा अच्छा बेचारी भोली भाली माता कर्मा भाई, दूसरे दिन उसने वही किया, अपनी लेट होगी खिचड़ी, ठाकुर जी अपने टाइम पे आ गए, खिचड़ी तैयार नहीं है अभी। भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, कर्मा नाम तब पड़ा, कर्मा जल्दी कर्मा, ये नाम जगन्नाथ जी ने दिया। फिर भगवान आए अभी खिचड़ी, जल्दी कर्मा, आग देर से खिचड़ी बनी, भगवान खाने लगे। उधर मंदिर में घंटी बज गई, पट खोलने की घंटी बजी, भगवान जूठे हाथ से ही भागे, हाथ भी नहीं धोए भागे, और आसन पर विराजमान हो गए विग्रह रूप में। तो पुजारियों ने क्या देखा कि भगवान के हाथ में खिचड़ी लगी है, भूमि में खिचड़ी लगी है, ये क्या हुआ। राजा को ही बताया, राजा ने पुजारियों ने पूछा भगवान को कि जय जय प्रभु, ये आपके हाथ में खिचड़ी क्या, मुंह में भी खिचड़ी लगी है। तब उस समय का राजे भी बड़े भक्त थे, जैसे कौन थे वो राजा, वो प्रताप रुद्र, बड़े भक्त थे वो गौरव भगवान के, पुरुषोत्तम देव राजा बड़े भक्त हो गए भगवान से। बात है पुरुषोत्तम देव राजा के लिए युद्ध किया था भगवान ने कृष्ण बलराम ने। तो भगवान कहते हैं मैं कर्मा भाई की खिचड़ी खाने जाता था, अरे मेरा एक भक्त गया, उसका बहुत सारी बातें सिखा के आ गया, खिचड़ी में देरी हो गई, खाने गया तो फिर इधर घंटी बज गई, तो मैं फिर ऐसे बिना हाथ धोए। तो भाई इतना धन्य है वो कर्मा भाई जिसकी खिचड़ी खाने आप जाते हैं। प्रिय बंधुओ, और पता लग गया राजा को और पुजारियों को कि भगवान उस पुजारी पर, उस ब्राह्मण पर नाराज हैं जो बहुत कुछ जाके कर्मा भाई को सिखा के आ गया। दूसरे दिन फिर वो पुजारी पहुंच गया, कहते कर्मा भाई ऐसा है, ये जो नियम है ना, पहले जब गया वो तो कर्मा भाई कहती हैं कि पहले इतना कोई टिटिम्मा सिखा गया, पता नहीं क्या करने आ गया, वो घबरा गई बेचारी, पहले इतना सिखा गया ये करना भी पता, और क्या कहने आ गया। तो बोला कि देखो कर्मा भाई, तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी ना वैसे ही बनाया कर, ये नियम हम सब ब्राह्मणों के लिए हैं, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं। ओ अच्छा लगा माता को, कहते अच्छा फिर आज आप भी खिचड़ी यहाँ भगवान के साथ पाना। तो ब्राह्मण पुजारी कहता है माता अगर हमारे जगन्नाथ प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, उन्हीं को बुलाओ, मैं कहाँ इतना योग्य हूँ कि भगवान के साथ बैठ के खिचड़ी पाऊँ। तो रोज भगवान कर्मा भाई की खिचड़ी खाते थे। प्रिय बंधु अपने भगवान को समझो, ये कितने दया में है, मेरे अंदर दया नहीं होने के कारण मैं भगवान की दया को नहीं समझ सकता, मैं कुटिल होने के कारण, दुष्ट होने के कारण भगवान की कृपा को नहीं समझ सकता। हुआ क्या, कर्मा भाई ने देह त्याग दी, भगवान को आपको पता है जगन्नाथ भगवान मारे कितने भोग लगते हैं उनको। अभी ये भी पता लग जाता है कि भगवान ने भोग को आरोगा या नहीं आरोगा, भोग नहीं खाया भगवान ने। पुजारी घबरा गए, पर क्या बात हुई, राजा को सूचित किया, राज ने कहा प्रभु जय जय प्रभु, आप ये भोग नहीं आरोग रहे, देखो तो भगवान रो रहे हैं, त्रिलोकीनाथ रो रहे हैं। राजा भी घबरा गया, भाई कोई भूल हो गई हमसे कि परम पिता रो रहे हैं। कहते प्रभु क्या बात कि मेरी माँ चली गई, मेरी माता चली गई, मुझे भी खिचड़ी कौन खिलाएगा, देखो भगवान कैसे हैं, भाव के भूखे। तो राजा कहता है प्रभु अगर आपको कर्मा भाई की खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी फिर आपने उनको धाम में क्यों भेज दिया। तब परमपिता कहते हैं जगन्नाथ भगवान यहाँ बहुत दुख है इस संसार में, मैं अपने भक्तों को ज्यादा देर यहाँ नहीं रखना चाहता। राजा कहते हैं प्रभु हमें कर्मा भाई जैसे तो भाव नहीं आएगा, लेकिन हम कर्मा भाई के नाम से रोज अब खिचड़ी का भोग लगाएंगे। आज भी कर्मा भाई की खिचड़ी का भोग जगन्नाथ भगवान को लगता है। तो हमारे भगवान भाव के भूखे हैं, वो भाव हमारा ढका हुआ है हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण। लेकिन जगन्नाथ जी से आज यही मांगना अपने, हे जगन्नाथ स्वामी कृपा करो ताकि मेरा सोया हुआ भाव जागृत हो। भाव को कहीं लाने नहीं जाना, वो अंदर है, लेकिन जब मन बट गया, बुराइयों में मन चला गया। अब जैसे कथा आती है हमारे एक आचार्य की, उन्होंने भगवान का अपना बेटा बना रखा था, उनका अपना बेटा भी हो गया, भगवान ने उनके बेटे को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिए तो अभी रोने लगे वो। तो भगवान कहते मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तूने मुझे बेटा बनाया है। कहते जब मैं मर जाऊँगा तो मेरा श्राद्ध करेगा? भगवान कहते करूँगा। आज भी भगवान उनका श्राद्ध करते हैं। क्या नाम था उनका? हैं गोविंद, आज भी श्राद्ध करते हैं भगवान। तो परमपिता तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब दुष्ट जीव हम माया जाले पड़े हुए, माया भी काम करते हैं, भगवत प्राप्ति का काम नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करने का काम नहीं करते। तो कर्म भाई धन्य है जिसकी खिचड़ी। मैं जब बहुत पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया तो कर्म भाई की वो मूर्ति वहाँ लगी थी, अभी नहीं मैंने देखी, हटा दी या क्या होगा, उस समय कर्म भाई की मूर्ति थी, इतनी महान आत्मा हुई। और देखो कि भगवान की एक दो कथा क्या था, एक दो कथा और समय है अगर तो सुनाता हूँ। सात मिनट हैं कथा, मैं जल्दी से सुना देता हूँ। एक पुजारी थे, वो भी बड़े भक्त थे, उनका नाम था तलीचा महापात्र, ब्राह्मण थे। तो राजा जब दर्शन करने आता था तो भगवान की प्रसादी माला मांगता था। इस समय जब राजा आया तो भगवान को शयन करवाया जा रहा था, और भगवान जब शयन करवाते हैं माला वगैरह खोल लेते हैं, और भगवान की माला तलीचा महापात्र ने पहनी थी। उनको पता लगा कि राजा दर्शन करने के लिए आ रहा है, उन्होंने क्या किया, वो माला जगन्नाथ जी को पहना दी, फिर से पहना दी। तो राजा ने मांगी तो वो माला राजा को पहना दी, जगन्नाथ जी की प्रसादी माला पहना दी। तो राजा ने उसमें एक बाल देखा, लंबा बाल, बाल देखा तो राजा ने बुलाया, तो भाई ये जगन्नाथ जी के सर में बाल कहाँ से आ गए, जगन्नाथ जी के सर में बाल नहीं है। तो जब मैं कल आऊँगा तो वो राजा ने सोचा कि महापात्र ने अपनी माला मुझे दी है, हैं भगवान की माला नहीं दी, या भगवान ने पहनी थी। तो राजा क्रुद्ध हो गया। रात को महापात्रा जी सोचने लगे, ये जगन्नाथ, ये राजा बड़ा कठोर है, मुझे प्राण दंड भी दे सकता है और मुझे यहाँ से निकाल भी सकता है। ये जगन्नाथ स्वामी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूँगा। उन्होंने जहर का ग्लास, जहर डाल के रख दिया। सोए तो राज जगन्नाथ जी सपने में आ गए, कहते तू मेरा पुजारी होकर घबराता है, क्या मैं गंजा हूँ, मेरे सर पर बाल नहीं है? दूसरे दिन जब राजा आया, पहले दिन तलीचा जी ने कहा कि हाँ भगवान के सर पर बाल है, बोल दिया उन्होंने, बाल तो हैं भगवान के सर पर। आए तो भाई ये बाल कब से, लंबे लंबे बाल जगन्नाथ जी के, ये जगन्नाथ जी के सिर पर बाल कब से आ गए, ये नकली हैं या असली हैं? कहते महाराज आपको राजा ने एक बाल खींचा तो खून निकल आया, खून निकला। राजा घबरा गया, दंडवत प्रणाम की, महापात्रा जी के चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके परमिश। देखो हमारे भगवान क्या क्या लीला करते हैं भक्तों के लिए। तो ये जगन्नाथ स्वामी भाव ग्राही हैं, और इनकी कृपा से भाव ही हमने मांगना है। कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव की बस एक सार, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बिगड़ा पार। लेकिन हम भजन तो करते हैं, कहा ना बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसा नहीं। बगल में छुरी नहीं रखनी, भावना से भगवान को भजना है और प्रयास करना है। प्रयास करने से सफलता मिलेगी। हैं, अंग्रेजी में कहा होता है कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम सब माया जाने पड़े हुए जीव हैं, ये शरीर आत्मा को दंड है, प्रभुपद कहते थे, लेकिन है ये अर्थपूर्ण। इसके द्वारा उस भाव को जागृत किया जा सकता है। और बहुत सारी भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं। एक दास्य बौरिया था, वो बेचारा बड़ा शूद्र था, वो शूद्र था। तो एक दो लाइन इसकी कथा की सुनाऊंगा मैं। तो एक पंडित जी के पास गया, कपड़ा बेचता था, जुलाहा था वो कपड़ा। तो बड़ा सा नारियल देखा, उसे बोला मैं अपने भगवान को अर्पण करूंगा, कि नारियल मेरे को दे दो, पैसे ले लो, कपड़े से काट लेना। कहते नहीं, सारा कपड़ा दे दो फिर नारियल दूंगा। वो बेचारे का उसी से हमारी रोज रोटी चलती थी, पूरा कपड़ा दे दिया, नारियल ले लिया। नारियल लोग जा रहे थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, अपना जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी में। तो उन्होंने कहा भाई मेरा भी नारियल भगवान को दे देना, अगर भगवान हाथ बढ़ा के लें तो देना, नहीं तो वापस ले आना। तो एक लेके गया, आने लगा उनको, उसने दिया, चलो उसका नारियल भगवान हाथ बढ़ा के लेंगे। कहा कि ये दास बौरिया ने ये भेजा है नारियल, अगर आप प्रभु स्वीकार करो तो। लंबा हाथ आया भगवान का, नारियल भगवान ने हाथ में ले लिया। और ये शूद्र था लेकिन भक्त था भगवान का, अनन्य भक्त। तो हमें वही भक्ति जागृत करनी है। इससे पहले आप से निकले सारे दोष निकालने हैं और कृष्ण प्रेम को जागृत करना है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो भावग्राही चिरार्दन जगन्नाथ भगवान की। बोलो बलदेव भगवान की। बोलो सुभद्रा माता की। सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण, प्रेम से बोलो, सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण।